तदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रसंग का क्रम चल रहा था। ईश्वर के सिवा किसी का भी भजन काम में नहीं आएगा। ध्यान करने के लिए एक परमात्मा का ही स्वरूप हृदय में बैठाओ। परमात्मा ही हमारा जीवन है, परमात्मा ही हमारे प्राण है। बहुत सुंदर बात है, सुनाई हुई फिर भी, उस परमात्मा के स्वरूप में रमण करना, संतुष्ट होना, साक्षात अमृत पान से भी बढ़कर है। अपने लिए तो यही अमृत पान होना चाहिए। सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ काम बताते हैं कि हम अपने भजन साधन करते करते मर जाएं, चाहे भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन भजन साधन में करते करते मर जाएं। भगवान मिले न मिले तो भगवान का काम है, हमारा काम थोड़े है कि हम भगवान को बुलावें। साधन भजन नहीं छोड़े, परमात्मा का चिंतन करते हुए सांसारिक काम में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अंदर में परमात्मा का चिंतन है तो कोई आपत्ति नहीं। जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति से जो हमारा व्यवहार होता है, उसमें परमात्मा को देखना चाहिए। जैसे दो भाई हैं, दोनों को नाटक खेलने के लिए भेज दिया, महाभारत का नाटक कर रहे हैं। एक भाई जयद्रथ बन रहा है, एक भाई अर्जुन का पार्ट खेल रहा है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं और नाटक में दोनों युद्ध करते हैं। दोनों के हाथ में चमकती हुई तलवार है, पर दोनों ही मन से इतना ख्याल रखते हैं कहीं मेरी तलवार से मेरे भाई को घाव न लग जाए। वो भाई भी सोचता है कि मेरी तलवार से मेरे भाई को चोट न पहुंच जाए, और ये भी है कि हम दोनों नाटक खेल रहे हैं तो ये नाटक भी नहीं बिगड़ जाए। दोनों भाई जानते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। ऐसे ही काम करते हुए ये मेरा भाई है, इसी तरह देखना चाहिए कि ये परमात्मा है, वो भी देखें कि ये परमात्मा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्ध चय। आपको यहां करना क्या है, हमको संसार में करना क्या है? हमको तो यहां पार्ट करना है। बाहर का व्यवहार नाटक है, नाटक को अच्छा बनाओ, परंतु अंतःकरण में मन से परमात्मा को याद रखो। तस्मात् सर्वे सुकालेषु माम अनुस्मर युध्यच। भगवान ने बहुत सोच समझ करके बात कही है। सब काल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध चे। अभी तुम्हारे सामने युद्ध का काम आया तो बाहर से युद्ध भी करो। मदगत प्राण अब चालू हुआ है। मदगत प्राण सारी चेष्टा जीवन प्राण सारी इंद्रियों की क्रिया सब उसके अर्पण करो। जैसे लोभी आदमी की सारी क्रिया केवल रुपयों के लिए अर्पित होती है, रुपया मिले रुपया मिले, चाहे कैसे ही मिलो कुछ भी हो, झूठ बोलना पड़े झूठ बोल देंगे, और कुछ करना हो और कुछ कर देंगे, कहीं से उठाना है तो चुपचाप उठा लेंगे। जैसे लोभी की सारी क्रिया रुपयों के लिए होती है, ऐसे हमारी क्रिया परमात्मा के लिए होनी चाहिए। भगवान का उद्देश्य होना चाहिए। रात दिन उसी की चर्चा करो, दूसरों को जानना और स्वयं का जानना। एक गुरु के दो शिष्य सेवक याद करते हैं, एक दूसरे से पूछते। एक गुरु के दो चेले, गुरु ने पाठ पढ़ाया, दोनों चेला आपस में पूछते हैं, अच्छा इसका क्या अर्थ है? तो वो कहता है, इसका तो मेरे ये अर्थ समझ में आया, पर इसका समझ तू बता। तो वो उसका अर्थ बताता है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम रूप गुण प्रभाव रहस्य लीला इसको लेकर आपस में बातचीत करो, मंथन करो। जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है, इसी तरह उन्हें मथने से परमात्मा का रहस्य निकलता है। या यूं भी कह सकते हो कि इन बातों को बार बार मथने से भगवान का प्रेम निकलता है। जो बात अपने समझ में अनुभव में आ गई उसका प्रचार करो, पर यह नहीं कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। अपना प्रचार मत करो, जो तत्व की बात है केवल उसी का ही प्रचार करो। दो विद्यार्थी रात दिन अपने सबक को याद करते हैं, एक तो अपना समझकर फिर पढ़ता है, नीचे क्लासों को, और दूसरा नहीं तो वह पढ़ाने वाला अधिक आगे जाकर उन्नति करेगा। जो अपने समझ के अंदर ही रहता है उसकी इतनी उन्नति नहीं होती। इसी प्रकार तत्व की बात जो समझ में आए वो दूसरों को भी सुनाओ, अपने अनुभव में आए वो बात दूसरों से कहो। अनुभव के बिना कहने पर फंस जाओगे। जप करना है, परमात्मा में रमण करना है, ध्यान है, कहना है, उस परमात्मा का ही घेरा है, उसी में ही हो। और ऐसे करते रहने से इतना आपको आस्वादन मिलेगा, उसकी तुलना में संसार का कोई स्वाद प्रतीत होगा ही नहीं और आपको वो तुच्छ से तुच्छ मालूम देगा। जैसे कोई आदमी पहले से फीका खाता है, उसको फीका भोजन बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मीठा खा लेता है उसके बाद उसको फीका दिया जाता है तो उसको बहुत ज्यादा फीका दिखता है। इसी प्रकार जब परमात्मा के नाम ध्यान लीला श्रवण लीला कथन में जो आपको रस आएगा, फिर आपकी वृत्ति में संसार एकदम बहुत फीका लगेगा। आप कहोगे संसार कुछ नहीं है, लेकिन जिनको संसार प्रिय लगता है वो अपने को मूर्ख कहेगा, अरे क्या नहीं, संसार में जितना सुख आराम उतना कहीं नहीं, इतना आप में और लोगों में फर्क पड़ जाता है। रात दिन अपना तो एक ही काम रहना चाहिए, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से, प्रेम ही इसका उद्देश्य है, प्रेम सहित एक एक क्रिया में उसका प्रेम देखो, प्रेम को लिए ही कर रहा है। भगवान कहते हुए फिर स्वयं ही जान जाता है कि मैं कौन हूं। ये माताएं घर में अनाज साफ करती हैं, धान साफ करती हैं, गेहूं है, बाजरा है, जो खाते हैं उसको साफ करते हैं। उस समय उनकी दृष्टि गेहूं पर नहीं होती, उनकी दृष्टि कंकर पर होती है। यूं बीनती है तो गेहूं गेहूं को नहीं देखे, कंकर कहां, कंकर कहां है, अरे इतने गेहूं पड़े हैं, माताजी आप गेहूं क्यों नहीं देखते, कि भाई मैं कंकर देख रही हूं, क्योंकि कंकर निकाल दूंगी तो भोजन में किरकिराहट नहीं होती। इसी प्रकार से भगत लोग होते हैं वो इस संसार के अंदर परमात्मा पर नजर रखते हैं। ये कंकर का उदाहरण कोई खास बढ़िया नहीं लगता, परंतु एक उदाहरण के रूप में बताया है। जैसे मनुष्य जिस काम में प्रवेश करता है और उसकी रुचि होती है, उस काम के बारे में वो सब बात जान लेता है। इसी तरह यदि वो परमात्मा के बारे में चले तो तत्व रहस्य को जान सकता है। परमात्मा में सबसे बढ़कर जो चीज है वह रमण करना है, परमात्मा में रमण करना है। उसका फल क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो परमात्मा में रमण करता है उसका दर्शन करने वाले को बहुत आनंद होता है, अपने आप पैदा होता है। भरत महाराज जा रहे थे, जहां चरण चिन्ह देखते उन्हें देखते देखते मुग्ध हो जाते, राम के प्रेम में रम जाते। उस दशा को देखने वाले निषाद राज थे, निषाद राज भरत जी की दशा देखकर बेहोश हो जाते थे। अरे भरत इतना प्रेमी, इसके बारे में मैंने क्या सोच लिया। जब भरत की दशा से निषाद की दशा हुई तो आप हम सोच सकते हैं भरत कितनी ऊंची दशा में पहुंचा होगा। राम जी को दूर से देखा गिर पड़े, क्योंकि अयोध्या से जब से भरत जी रवाना हुए उनके मन में केवल राम ही का ध्यान है, चिंतन है, उन्हीं में ही रमण कर रहे थे। चरण चिन्हावे तो उन्हीं में ही, अब वो जाकर वहां गिर गए, भगवान उठाओ चाहे मत उठाओ कोई उनको परवाह नहीं थी। भरत जी जब जा रहे हैं गो का क्या भाव है, भरत जी वापिस जा रहे हैं चरण पादुका लेकर, तो अब भरत जी चरण पादुका में मन लगाए हुए हैं। चरण पादुका का कोई वस्तुगत प्रेम नहीं, राम के चरणों से सुशोभित है, उसको वे राम से अलग नहीं मानते, राम का स्वरूप मानते हैं। नंदीग्राम में भी उन्हीं में मन रमा हुआ है। कभी कभी तो भरत जी को ऐसा अनुभव होता था कि राम और सीता मेरे पास है, कभी वन में गए ही नहीं, मैं ये क्यों उल्टा पुल्टा विचार लाऊं। और कभी कभी बुरी तरह से रोने लग जाते। जब एक दिन की अवधि रह जाती है तो रहा एक दिन अवधि अधारा, इत्यादि ये भाव है, ये रमण करना है। राम राम रघुपति जपत, ऐसी उनकी दशा हो गई। आप सोचो ऐसे भरत के स्वरूप को देखने के अधिकारी हनुमान जी महाराज थे, और उन्होंने आकर देखा मुग्ध हो गए, भरत जी की क्या दशा हुई। ऐसी गोपियां भगवान में मुग्ध हो गई, ये मुग्ध होना है, यही रमण करना है। आप देखो गोपियों के अंदर भगवान के बिछुड़ने के बाद वियोग में रोना होता है, हरदम उनका चिंतन होता है, परंतु कृष्ण भगवान पर उन्होंने कभी आदेश नहीं चलाया कि कृष्ण तुम हो तो मथुरा में, तुम आओ और हमको दर्शन दो। इतनी बड़ी गोपियां भी भगवान के मन के बाहर नहीं जाती, ऐसा प्रेम तो अपना है ही नहीं, हम क्यों कहें कि हे भगवान आओ हमको दर्शन दो। हम तो यही कहें हे भगवान आपका प्रेम मिले और उसी में ही हम मुग्ध हो जाएं, उसी में ही रमण करें। भौरों से गोपियां कहती हैं ए भौरे तू काला कल उठा, हमारे सामने आकर मीठा मीठा गुनगुनाता है, तो ये कृष्ण की स्मृति दिला दिलाकर तू हमारे मन में क्यों दुख पैदा कर रहा है। कितनी भी गोपियों के मन में तड़फन है, याद भी आता है और मिलना भी चाहती हैं, पर मिलने के लिए न तो वे मथुरा जाती हैं और न मथुरा से कृष्ण आते हैं। यह विरहावस्था का रमण है। उद्धव भी उनके रमण को देख देख कर मुग्ध हो गए, उनका भी अपना ज्ञान ध्यान सब जाता रहा। भक्त की जब ये रमणावस्था होती है तो भगवान भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। रामायण में सुतीक्ष्ण जी भगवान के ध्यान में रमण कर रहे हैं, उनके रमण करने पर भगवान भी मुग्ध हो गए और एक वृक्ष की ओट में छिपकर खड़े हो गए। सुतीक्ष्ण जी को कुछ पता ही नहीं है। भगवान को भी आनंद आ रहा है और सुतीक्ष्ण जी को भी आनंद आ रहा है, मिले दोनों ही नहीं, पर आनंद में किसी की यहां कमी नहीं। संसार में रमण करते हो, ये झूठा नाटक नहीं तो क्या है? आपको बुरा नहीं लगे पर सावधानी से ध्यान दो, संसार एक छोटा सा नरक है। कभी सुना क्या माताओं बहनों सज्जनों, ये बात सेठ जी ने कही, संसार एक छोटा सा नरक है, ये ब्रह्मांड बहुत विशाल स्टेज है, यहां परमात्मा का अभिनय हो रहा है, खेलने लगे परमात्मा के साथ रहो। झूठे नाटक में क्यों फंसते हो? उस परमात्मा के आनंद का क्या ठिकाना है? उसके रमण का क्या ठिकाना है? उस परमात्मा के प्रेम सौंदर्य की, सारी दुनिया के सौंदर्य प्रेम को लेकर उसका एक कण भी आ जाए तो ये संसार का सारा सौंदर्य बेकार है, तुच्छ है। परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा की क्रीड़ा, परमात्मा का लावण्य, परमात्मा का सौंदर्य, सब कुछ दिव्य है। हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में आसक्त होते हैं तो जरा सी कोई विशेषता तो बताओ कि इस आसक्ति से ये लाभ होता है। यदि मनुष्य जन्म पाकर भी ऐसे तुच्छ गंदे और मलिन रमण में ही आयु बिता दे तो हमसे तो पशु ही श्रेष्ठ है। पशु मरता है उसको कोई दंड नहीं है, वह भोगी होनी है। मनुष्य शरीर में किए हुए पाप का ही बिचारा ये परिणाम भोग रहा है। इसलिए इस महान निंदित घृणित रमण का सुख तो सुअर कुत्ते और जिनसे हम जिनको देखना भी नहीं चाहते वे तो सब इसी सुख में लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य होकर के भी इसी सुख में गए तो ईमानदारी से सोचो कहां मनुष्य कितना पतन की ओर गया। लाखों लाखों योनियों में भी एक मनुष्य के जन्म में किए हुए पापों का पूरा फल नहीं भोग सकेंगे, इतना भयंकर मार्ग है। को कोई परमात्मा की कृपा धक्का लगा दे तो बात अलग है। इसलिए ये गंदे संयोगों को छोड़ो, इसका परिणाम क्या होगा इसको ध्यान में रखो, ऐसे गंदे सुख का त्याग करो और परमात्मा के साथ रमण करने की उच्च कोटि की इच्छा करो। किसको कहें, कौन सुने, फिर भी लोग उधर ही मन लगाते हैं। नर्तन उपाय विषय मन दे, पलटी सुधाते सठ विष ले। अमृत सामने पड़ा है और सामने भयंकर हलाल चेर पड़ा है, इतना मनुष्य बेसुध हो गया कि प्रभु के साथ जो रमण अमृत है उधर ध्यान नहीं देता। प्रभु के रमण को छोड़कर वह रमणियों में रमता है, लाखों योनियों में उसकी दुर्दशा ही होती रहती है। कितनी दुर्दशा होती है इसका कोई ठिकाना नहीं है। आता है सब प्रकार से सोच लो, विचार लो, किसी प्रकार का कोई संदेह रहता हो तो उस संदेह को मिटाओ और अपने स्वभाव को बदलकर उस परमात्मा के स्वरूप में रमण करो। उसने हमको बड़ा अच्छा कृपा करके मौका दिया है, इस सांसारिक रमण को त्याग दोगे आप में एक बड़ी विलक्षण शक्ति आएगी और वो शक्ति आपको प्रभु प्रेम में रमा देगी। आप साहस करो, उत्साह को भंग मत करो। जब तक मनुष्य के शरीर में श्वास है तब तक आप ये काम कर सकते हो। जिस दिन ये श्वास निकल जाएंगे उस दिन आप कुछ नहीं कर सकोगे। इससे अच्छी और तो कोई बात नहीं हो सकती। श्रीमन्नारायण।